आज है 27 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में घात लगाकर सुरक्षा बलों के 25 जवानों को मारने के बाद माओवादियों ने कहा वो हिंसावादी नहीं है।
सशस्त्र बलों के जवान व्यक्तिगत तौर पर हमारे दुश्मन नहीं है, पर दुश्मन को खतरे नहीं है।
छत्तीसगढ़ की भाजपा इकाई ने कहा समाधान हम ही करेंगे।
हम लोगों को विश्वास है कि हमारी सरकार ही इस नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने में आगे आई।
कश्मीर मुठभेड़, भारतीय सेना के 3 सैनिक, 2 चरमपंथियों के अलावा एक आम नागरिक की मौत। और
मौत से कौन डरता है शंकर कथूरिया, मौत तो एक दिन सबको आती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक बहादुर की जिंदगी जिया और एक बहादुर की मौत मर रहा हूँ।
अभिनेता विनोद खन्ना नहीं रहे, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की मौत के बाद सीपीआई माओवादी ने कहा है कि सशस्त्र बलों के जवान व्यक्तिगत तौर पर माओवादियों के दुश्मन नहीं हैं और माओवादी हिंसावादी नहीं हैं। लेकिन सामंती शक्तियों, देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों का प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कराई जा रही हिंसा के खिलाफ उनका हथियार उठाना जरूरी हो गया है। सीपीआई माओवादी के दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने सुरक्षा बलों के जवानों के शवों से छेड़छाड़ के कथित आरोपों से इनकार किया है। भारत प्रशासित कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना के एक कैंप पर चरमपंथियों ने हमला किया, जिसमें 3 सैनिकों की मौत हो गई है। जवाबी कार्रवाई में 2 चरमपंथी भी मारे गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सैनिक कैंप के पास हमले में एक नागरिक को गोली लगी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। सेना के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया के मुताबिक चरमपंथियों ने आज सुबह चौकीबल स्थित सेना कैंप पर हमला किया था। इस हमले में 5 सैनिक घायल हुए हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने बर्लिन में संसद को बताया कि हाल के दिनों में तुर्की के जर्मनी और यूरोपीय संघ से रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के अधिकारियों से हाल ही में हुए जनमत संग्रह को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आशंका के बारे में जवाब देने की अपील की गई है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयब अर्दोगान की संवैधानिक शक्तियां बढ़ाने के सवाल पर जनमत संग्रह हुआ था। एंगेला मर्केल ने संसद में ये कहा,
Natürlich respektieren wir das Recht der türkischen Bürgerinnen und Bürger frei
हम तुर्की के लोगों की पसंद के अधिकार का सम्मान करते हैं कि वो संवैधानिक फैसले पर लोकतांत्रिक और आज़ादी से अपनी राय रख सकें। ये साफ है कि हमें OSCE और यूरोपीय आयोग की संसदीय असेंबली की साझा रिपोर्ट का संज्ञान लेना होगा। सरकार से इस बारे में जवाब मांगा जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक जनमत संग्रह में शामिल सभी पक्षों के लिए अवसर समान नहीं थे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि खास मौकों पर मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकारों में गैर बराबरी बरती जाए। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया सरकार ने इसराइल पर राजधानी दमिश्क के हवाई अड्डे के पास सैनिक अड्डे पर मिसाइल हमला करने का आरोप लगाया है। सीरिया में सरकार प्रायोजित मीडिया के मुताबिक इसराइल ने यह हमला चरमपंथी गुटों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया है। कुछ स्थानीय सूत्रों का कहना है कि हथियारों के एक ऐसे अड्डे को निशाना बनाया गया है जिसका संचालन लेबनान के कट्टरपंथी गुट हिजबुल्ला के हाथ में है। हिजबुल्ला सीरिया के युद्ध में सरकार का सही योगी है। इसराइल के मंत्री इसराइल कार्ट्स ने कहा कि इसराइल ने हिजबुल्ला को अत्याधुनिक हथियार पहुंचाने के ईरान के इरादों को ध्वस्त करने की अपनी नीति के तहत यह हमला किया है। इसराइली अधिकारियों ने कहा है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी ने गाजा को इसराइल की तरफ से मिलने वाली बिजली का बिल का भुगतान नहीं करने का फैसला किया है। इससे गाजा में बिजली की सप्लाई पूरी तरह रुक सकती है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी अपने प्रतिद्वंद्वी हमास पर दबाव बढ़ाने की कोशिश में है। गाजा पर हमास पिछले एक दशक से काबिज है। हमास ने बिजली के बिल का भुगतान नहीं करने के फैसले की आलोचना की है। हमास के प्रवक्ता इस्माइल रिदवान ने कहा,
ونعتبر ان هذه الخطوه هي جريمه ضد الشعب الفلسطيني وهي تساوق مع الاحتلال
یہ فیصلہ فلسطینی لوگوں کے خلاف اپرادھ ہے ہم چیتاونی دینا چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیلی قبضہ نہیں ہٹایا گیا تو بڑا دھماکہ ہوگا اور یہ دھماکہ یہودی وادیوں کے قبضے کے خلاف ہوگا فلسطینی اتھارٹی اور قبضہ کرنے والے بہت پچھتائیں گے کیونکہ حماس اس کا جواب دے گا یہ تھے اسماعیل رضوان کے شبد بی بی سی سماچار
एक्टिंग में कोई लिमिट नहीं है। दिस इज़ वन एरिया एनी क्रिएटिव फील्ड हैज़ नो लिमिट्स. आप ये नहीं कह सकते मैं बहुत अच्छा एक्टर बन गया हूँ या मैं सब कुछ सीख गया हूँ, ये कभी हो नहीं सकता. हमेशा देर इज मोर, और भी.
बरसों तक हिंदी फिल्मों के हीरो, खलनायक, डाकू, प्रेमी, पति, सेठ, गरीब, तरह तरह के किरदार निभाने वाले इस कलाकार की भूख कभी शांत नहीं हुई और आज ये कलाकार हमें छोड़कर चला गया. आज के इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे उन निशानों को जो विनोद खन्ना अपने पीछे छोड़ गए और सुनिएगा उनके साथ बीबीसी की एक खास बातचीत. ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर. मैं हूं राजेश जोशी. आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां घने जंगलों में सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 25 जवानों को घात लगाकर मारने के बाद माओवादी पार्टी ने कहा है कि वो हिंसावादी नहीं है. माओवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा कि सुरक्षा बलों के जवान हमारे दुश्मन नहीं हैं. पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ राज्य इकाई ने विश्वास जताया है कि सरकार जल्द ही नक्सलवाद को खत्म कर देगी. रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट.
सीपीआई माओवादी के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने गुरुवार को अपने एक बयान में सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों पर किए गए हमलों को सही ठहराने के लिए कई चीजों को जिम्मेवार बताया है. माओवादी प्रवक्ता ने सुरक्षा बलों की कई कार्रवाइयों का हवाला अपने बयान में दिया है.
की हत्या के विरोध में एवं महिलाओं के सम्मान व इज्जत की खातिर किए गए हमलों के रूप में बिजली चिंता गुप्ता हमलों को देखा जाना चाहिए.
माना जाता है कि माओवादी राजनीति के केंद्र में हिंसा है, लेकिन माओवादियों के प्रवक्ता ने सफाई दी है कि वे हिंसावादी नहीं हैं.
हम हिंसावादी नहीं हैं, लेकिन सामर्थ्य शक्तियों, देशी विदेशी कारपोरेट घरानों का प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र राज्य सरकारों द्वारा हर पल तक प्रतिरोध में उत्पीड़ित जनता के पक्ष में खड़े होकर अनिवार्य प्रतिहिंसा को अंजाम देने हम बाध्य हैं. के हमलों में मारे जाने वाले पुलिस अर्धसैनिक बलों के जवानों की लाशों के साथ हम अपमानजनक व्यवहार नहीं करते हैं.
माओवादी प्रवक्ता ने सुरक्षा बल के जवानों पर किए जाने वाले हमलों पर भी सफाई दी है.
सशस्त्र बलों के जवान व्यक्तिगत तौर पर हमारे दुश्मन नहीं है, पर दुश्मन तो कतई नहीं है, लेकिन शोषण मूलक राज्य सत्ता के दमनकारी राज्य मशीनरी के हिस्से के तौर पर जन दमन के औजार के रूप में वे चूंकि क्रांतिकारी आंदोलन के आगे बढ़ने के रास्ते में प्रत्यक्ष रूप से आड़े आ रहे हैं. पार्टी पीएलजीए जनता सरकारों और जनता पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए अनिवार्य रूप से पीएलजीए के हमलों का शिकार बन रहे हैं.
लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रवक्ता और विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा है कि माओवादियों की हिंसक कार्रवाइयां किसी से छुपी हुई नहीं है. उन्होंने दावा किया कि जल्दी ही छत्तीसगढ़ से माओवादी आंदोलन का सफाया हो जाएगा.
बस्तर का कुछ इलाका निश्चित रूप से कुछ घोर नक्सलवाद से जुड़ा है, लेकिन पूरा बस्तर नक्सलवाद से जुड़ा मैं ऐसा नहीं मानता. और ये दावा भी अगर कोई करता है कि पूरा बस्तर या छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ज़िले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए, मैं इसको नहीं मानता. एक सीमित क्षेत्र में जाके सिमट गए तो हम उन सारे मोर्चों पर लड़ेंगे और हम लोगों को विश्वास है कि हमारी सरकार ही इस नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने में आगे आई.
माओवादियों के बयान नए नहीं हैं और उनके जवाब में सरकार के बयान भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा का दौर पिछले 4 दशकों से जारी है, जिसकी चपेट में आम आदिवासी लगातार पिस रहा है. आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़.
बीबीसी इंडिया बोल.
माओवादियों के एक और हमले में सुरक्षा बलों के 25 जवानों की मौत. नक्सली समस्या का समाधान क्या बंदूक है या बातचीत, यही है इस हफ्ते बीबीसी इंडिया बोल का विषय. क्या है इस विषय पर आपके विचार? शनिवार 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर.
बीबीसी इंडिया बोल.
छत्तीसगढ़ के बाद आइए रुख करते हैं कश्मीर का, जहां सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर दुख्तराने मिल्लत नाम के अलगाववादी संगठन की संयोजक आयशा अंदराबी को हिरासत में ले लिया है. उधर कुपवाड़ा के पास हथियारबंद चरमपंथियों के साथ एक मुठभेड़ में भारतीय सेना के 3 जवान और 2 चरमपंथी मारे गए हैं. ताज़ा जानकारी के लिए मैंने कुछ ही देर पहले श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से फ़ोन पर बात की और पूछा कि जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ क्या हो रहा है.
घटना जब हुई और जब फौज ने ऑपरेशन कॉल ऑफ किया और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, तो वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर आए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया और लोग मुतालबा कर रहे थे कि जो चरमपंथी की लाशें हैं वो उनके हवाले कर दी जाएं, लेकिन प्रशासन नहीं चाहती थी कि उसको लेकर बड़ा हंगामा हो और उसका फ्यूनरल में लोग जाएं, फिर भारत विरोधी प्रदर्शन हो, तो पुलिस ने लाशों को डिटेन ही कर रखा, तो जिससे क्लैशेस हो गए और क्लैशेस बहुत ज्यादा हो गए। एक जगह तो हॉस्पिटल के अंदर भी शैल गिरे और उसके बाद पुलिस का कहना है, जो वहाँ पे शमशेर हुसैन एसपी हैं उनसे बात हुई मेरी, उनका कहना है कि जब मॉब जो है वो काबू से बाहर हो गए तो उसके बाद मॉब पर आर्म फोर्सेस ने फायरिंग की जिसमें 45 साल के एक गुलाम हसन भट्ट जो है उनकी मौत हो गई।
तो उनकी मौत के बाद फिर वहाँ पर क्या लोगों का गुस्सा, क्या वो बिखर गए, चले गए अपने घरों में या और उन्होंने प्रदर्शन किए?
उनकी मौत के बाद जो है प्रदर्शन और ज्यादा भावुक हो गए लोग और उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किए। उसके बाद पुलिस ने हल्का सा रिट्रीट भी किया कोलेटरल डैमेज को बचाने के लिए। तो लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ पे प्रदर्शन भी जारी है और प्रशासन ने जगह जगह नाकाबंदी भी की है ताकि लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो, लेकिन थैंकफुली जो बारिश हुई है बहुत जोर की बारिश, मूसलाधार बारिश इस वक्त भी हो रही है, उसकी वजह से लोग तितर बितर हो गए।
और ये सब कुछ हुआ कुपवाड़ा इलाके में। अच्छा कुपवाड़ा में
बात है, ये कुपवाड़ा की बहुत ही संवेदनशील एक जगह है जहाँ पे गैरिजन है, आर्मी का आर्टिलरी कैंप है, इसको चौकी बल कहते हैं, इससे बिल्कुल निकट में लाइन ऑफ कंट्रोल पड़ती है।
और इधर जो श्रीनगर है शहर, वहाँ भी बहुत सारे जो अलगाववादी नेता हैं उनको या तो हिरासत में लिया गया है, जैसे दुख्तरान मिल्लत की आयशा अंदराबी।
जी आयशा अंदराबी को उनकी साथी फहमीदा समेत कल रात उनके घर जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में सोवरा इलाका है वहाँ पर छापा मारने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। पहले ही जो है सईद अली गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक जो है वो घरों में नजरबंद है और कई हफ्तों की कैद के बाद यासीन मलिक को जो है रिहा किया गया था परसों, लेकिन उनको भी अब हाउस अरेस्ट ही किया गया है जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो इस तरह से मतलब प्रशासन कोई भी ऐसा लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है, बल्कि अब तो जो इंटरनेट है वो तो पहले ही रिस्ट्रिक्टेड था, यानी मोबाइल इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है और जो ब्रॉडबैंड लाइन्स हैं ऑफिशियल लाइन्स वो भी बहुत ज्यादा सुस्त हैं।
ये थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। और अब चर्चा सीरिया की, जहां राजधानी दमिश्क में एक मिसाइल हमला हुआ है। सीरिया सरकार ने आरोप लगाया है कि यह हमला इसराइल ने किया है और इसराइल ने कहा है कि यह हमला उसकी नीतियों के मुताबिक है। और जानकारी के साथ स्टूडियो में मोहनलाल शर्मा मौजूद हैं।
राजेश, सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, उसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नज़दीक स्थित एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमला हुआ है और इस हमले में फ्यूल टैंक और वेयर हाउस जैसे सैन्य साजो सामान को नुकसान पहुंचा है। सीरिया की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है सना, उसने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दमिश्क हवाई अड्डे के दक्षिण पश्चिम इलाके में स्थित सैन्य ठिकाने पर कई मिसाइलों से हमला हुआ जिससे कि काफ़ी साजो सामान जो कि सैन्य है वो बर्बाद हो गया। सीरियाई सरकार समर्थित टीवी चैनल अल मायदीन ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इसराइल के कब्जे वाले गोलन की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में उड़ रहे इसराइली लड़ाकू विमानों ने इस हमले को अंजाम दिया। ब्रिटेन स्थित सीरियाई मानवाधिकार संगठन का कहना है कि आज सुबह इस धमाके की आवाज़ को पूरे शहर में सुना गया और माना जा रहा है कि ये हवाई अड्डे से जाने वाली सड़क पर किया गया।
जी मोहनलाल, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद खन्ना हमें छोड़कर चल बसे हैं। जब भी हिंदी फिल्मों में हैंडसम अभिनेताओं का जिक्र होगा तो विनोद खन्ना का नाम उनमें जरूर शामिल होगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई विनोद खन्ना की एक तस्वीर ने उनके प्रशंसकों को हैरान कर दिया था। एक मजबूत, दिलकश, खूबसूरत और हंसमुख सितारा अस्पताल के कमरे में कमजोर, बेजार और लाचार नजर आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से विनोद खन्ना का मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में इलाज चल रहा था और आज 70 साल की उम्र में यह सितारा हमेशा के लिए डूब गया। विनोद खन्ना के सफर को याद कर रही हैं बीबीसी की तृप्ति श्रीवास्तव।
मौत से कौन डरता है शंकर कथूरिया, मौत तो एक दिन सबको आती है।
विनोद खन्ना वो अभिनेता जिसकी जिंदगी अभिनय, आध्यात्म और राजनीति के अनोखे रंगों से रंगी थी। विनोद खन्ना का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना ने 16 साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी और इन फिल्मों ने फिल्मी दुनिया में उनकी दिलचस्पी बढ़ा दी। लेकिन उनके कारोबारी पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि विनोद फिल्मों में काम करें।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
1982 में जब विनोद खन्ना का करियर बुलंदी पर था, तब वो अचानक आध्यात्मिक गुरु ओशो की शरण में चले गए और ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया। 5 साल बाद 1987 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से एक बार फिर फिल्मों में वापसी की। 1997 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बीजेपी के सांसद बने। वो 4 बार पंजाब के गुरदासपुर से सांसद रहे। शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि कैसे दोनों एक साथ मंत्री बने।
जिस दिन मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना, उसी दिन विनोद खन्ना ही मंत्री बने। और विनोद खन्ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। हालांकि मैं जब कैबिनेट मिनिस्टर बना और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, तो कई लोगों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की या कई लोगों ने पूछने की कोशिश की, आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया और शत्रुघ्न सिन्हा जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो विनोद खन्ना ने बहुत ही बड़प्पन के साथ, साफ गोई के साथ कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में हमारे कलीग रहे हैं, दोस्त रहे हैं, लेकिन राजनीति में मुझसे सीनियर रहे हैं। इसलिए राजनीति में उनसे सीनियर हैं तो डिजर्व करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर बनना, और वक्त आएगा तो कभी हम भी बने।
1999 में विनोद खन्ना को इंडस्ट्री में योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। वो फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभा रहे थे। हाल के सालों में वो फिल्म दिलवाले में शाहरुख खान और दबंग में सलमान खान के साथ नजर आए थे। फिल्म एक थी रानी उनकी आखिरी फिल्म रही जो इसी महीने रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ हेमा मालिनी भी हैं।
विनोद खन्ना नहीं रहे, फिल्मों में सफलता के बाद राजनीति में कदम रखा, वहां भी अपनी छाप छोड़ी। बंबई में हमारी सहयोगी सुप्रिया सोगले ने विनोद खन्ना से 2014 में मुलाकात की थी। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, लीजिए प्रस्तुत है ये बातचीत।
विनोद जी, आपकी पहली फिल्म की क्या यादें हैं?
पहली मेरी फर्स्ट फिल्म का बहुत जमाना गुजर गया, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था और पहले दिन से ही मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंडस्ट्री में आया था। हालांकि मेरा इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, मुझे अचानक ऑफर आया और मैं आ गया फिल्म इंडस्ट्री में। मैं कोई फिल्म इंस्टीट्यूट से नहीं आया, मैं कोई एक्टिंग ट्रेनिंग लेके नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने स्कूल में कॉलेज में थोड़ा सा स्टेज वर्क किया था। उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि मैं काम कर सकता। तो जैसे जैसे आप फिल्में करते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप ग्रो करते जाते हैं। एक्टिंग में कोई लिमिट नहीं है, दिस इज़ वन एरिया, एनी क्रिएटिव फील्ड हैज़ नो लिमिट्स। आप ये नहीं कह सकते मैं बहुत अच्छा एक्टर बन गया हूँ या मैं सब कुछ सीख गया हूँ, ये कभी हो नहीं सकता। हमेशा देर इज़ मोर, और भी। तो जैसे जैसे आपको अच्छे अच्छे रोल मिलते हैं, वैसे वैसे आपको उसमें डूबेंगे, नई नई चीज़ें आप खुद अपने अंदर से निकालेंगे। एक्टिंग इज़ नथिंग बट द होल एक्सपीरियंस कमिंग आउट, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपने जो पढ़ा है, लिखा है, आपने रीड किया है, नॉवेल्स पढ़ी हैं, हर चीज़ जो ऑब्जॉर्व की, वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं जब आप एक रोल करते हैं।
आज के दौर के किसी निर्देशक का काम आपको बहुत पसंद है, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं?
नहीं, ऐसे तो बहुत सारे नए लोग हैं, मैं सबकी फिल्में भी देखी भी नहीं है, बट लोग तारीफ करते हैं बहुत नए लोगों की। मैंने बहुत कम काम किया है, फिल्में भी कम देखता हूँ, लेकिन यस, आई वुड लाइक टू वर्क विद न्यू टैलेंट, न्यू पीपल हु कैन डिलीवर।
आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लंबा अरसा गुजारा है, काफ़ी बदलाव देखे हैं, तो कौन सा बदलाव है जो आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा बदलाव है जो आपको अच्छा नहीं लगा?
नहीं, बहुत, फिल्म इंडस्ट्री हैज़ प्रोग्रेस अ लॉट हमारे समय से, और अभी टेक्निकली इतना आगे चली गई है फिल्म इंडस्ट्री टैलेंट आज इतना इतना बढ़िया टैलेंट है, यू नो, आज मैं देखता हूँ लड़कियों को देखता हूँ, यू नो, प्रियंका पदुकोने एंड सो मेनी अदर गर्ल्स, माइकल, अमेजिंग टैलेंट। लड़कों को देखता हूँ जितने स्टार्स बड़े बड़े हैं, सब बहुत अच्छे टैलेंट है सबके सब में। फिल्मों के अभी तक मुझे लगता है स्क्रिप्ट्स में अभी तक कमी मुझे कभी कभी लगती है, और अदरवाइज आई थिंक वी आर एट पार विद हॉलीवुड।
आप नेता बन चुके हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो किस तरह से फिल्मों का चयन करते हैं आप?
नहीं, फिल्म तो बेसिक करने की वजह होती है कि भाई अच्छा एक रोल मिला है आपको, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली है। सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट को देखता हूँ, अपने रोल को नहीं देखता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रोल आपका बहुत अच्छा होता है लेकिन स्क्रिप्ट बहुत बुरी होती है, तो वो फिल्म भी नहीं कर सकते आप। तो अगर तो स्क्रिप्ट में सुधार लाते हैं और रोल अच्छा है तो फिर तो मैं करता हूँ। तो मेन रीज़न फॉर चूजिंग अ फिल्म इज दैट, कई बार ऐसा होता है कि यारों दोस्तों की वजह से करनी पड़ती है, यारी दोस्ती की वजह से। कई बार मैंने ऐसी फिल्में भी की हैं जहाँ 3 दिन का काम था, 4 दिन का काम था, यू नो, गेस्ट अपीयरेंस करना पड़ता है। इतने साल अब फिल्म इंडस्ट्री में मिलजुल के रहे हैं, तो यू हैव टू बी ऑब्लिगेटरी टू सो मेनी पीपल। बाकी मैं ज़्यादा फिल्में करता नहीं, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री मेरी दाल रोटी है, दिस इज़ वेयर आई अर्न माई ब्रेड एंड बटर। राजनीति में मैं कुछ कमाई करने के लिए नहीं आया। तो साल में मैंने तय किया कि 2-4 फिल्में तो करनी ही करनी।
फिल्मों में होने वाले सेंसरशिप के बारे में आप क्या राय रखते हैं?
सी, मैं तो सेंसरशिप में बिलीव नहीं करता हूँ। किसी चीज़ पे सेंसरशिप होनी चाहिए, यू शुड हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई टोटली, अनलेस यू नो समबडी इज टॉकिंग अगेंस्ट द नेशन, तभी कुछ सेंसरशिप की बात आती है, अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन सेंसरशिप।
विनोद खन्ना से बीबीसी की आखिरी बातचीत। और अब समय है आपकी राय का।
आपकी राय आज चिट्ठियों के साथ। स्टूडियो में मैं हूं वंदना, और मेरे साथ हैं,
मेरा नाम है पंकज प्रियदर्शी। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा भी, बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है आज।
बहुत बहुत आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में।
जी शुक्रिया। तो शुरू करें चिट्ठियों का सिलसिला। बहुत सारे जो ईमेल हैं, संदेश हैं, वो दुनिया जहान के बारे में है, काफी तारीफ हुई है। मोहताशिम अहमद हैं, इन्होंने लिखा है कि दुनिया जहान सुना, निखिल रंजन ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और उम्मीद करता हूं कि कोरिया के बारे में भी आगे कार्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दीपक सिंह हैं, ये बाड़मेर राजस्थान से हैं हमारे श्रोता, इन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि मैं जैसे फ्रांस पहुँच गया, और बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा कार्यक्रम देने के लिए। इसी तरह से जसदेव सिंह हैं, उन्होंने भी कहा है कि पूरी बीबीसी टीम को धन्यवाद, ये भी राजस्थान से हैं, कि इस तरह का कार्यक्रम दिया फ्रांस के बारे में।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका ये बधाई संदेश हम निखिल तक जरूर पहुंचा देंगे। और वंदना, जैसा आपको पता है कि 2 साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे विवेचना और दुनिया जहान के बारे में सबसे ज़्यादा हमें चिट्ठियां मिलती हैं, और लोग बहुत ज़्यादा इससे खुश भी रहते हैं, और जिस तरह के विषय हम उठाते हैं उस कार्यक्रम में, बेसिकली हमारा मकसद ही यही होता है कि जिन खबरों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों को, उन खबरों के पीछे की खबर को हम श्रोताओं तक पहुँचाएँ। तो हमें लगता है इनके चिट्ठियों से लगता है कि हमारा मकसद जो है सफल हुआ, और आपकी बात जरूर पहुंचा दी जाएगी कि कोरिया के बारे में भी आने वाले दिनों में इन्हें कार्यक्रम में सुनने को मिलेगा।
और फ्रांस पे हम लगातार, क्योंकि वहाँ चुनाव का माहौल है, तो लगातार हम देते रहेंगे।
एक दौर का हो चुका है, और आने वाले दिनों में जब दूसरे दौर का होगा तब भी हम समाचार में चर्चा जरूर करेंगे।
जी, और अगला जो ईमेल है वो मैं स्पेशल या खास सिर्फ इसलिए बोलूंगी कि ये हमारी महिला श्रोता का है, और बहुत कम चिट्ठियां आती हैं, ये मैं हमेशा
और आपने उसको पकड़ भी लिया।
तो ये सरिता सिंह हैं, कुमारगंज फैजाबाद से, इन्होंने लिखा है, कहा है कि कार्यक्रम सुनती रहती हूँ पर व्यस्तता के कारण पत्र नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन कार्यक्रम जब सुना, सुकमा का जो हमला हुआ उसमें सलमान रावी की जो इन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि बहुत ही मार्मिक लगी, इसी वजह से एक तरह से ये पत्र अपनी व्यस्तता से निकाल कर उन्होंने लिखा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपने लिखा है, सुकमा की घटना जो हुई थी उसके बाद हमने अपने संवाददाता सलमान रावी को वहाँ भेजा है, और सलमान वहाँ पहले भी काम कर चुके हैं वंदना, उन इलाकों में, और लोगों को याद होगा कि बस्तर से और भी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से उन्होंने रिपोर्टिंग की है। एक पत्रकार होने के नाते ऐसी जगहों पर पहुँच कर हम श्रोताओं को समय से बहुत कुछ घटनाओं से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि हमारा मकसद जो है सफल हुआ है।
जी, अगला जो ईमेल है वो है एहसान असगर, महाराष्ट्र से, ये पहले भी लिखते रहते हैं
जी,
और इन्होंने एक तरह से शिकायत ही बोल सकते हैं कि नमस्कार भारत सुना, खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम को मुश्किल से 5 ही मिनट दिए गए, इसे ज़्यादा समय दिया जाता था पहले। लगा था इन्हें कि आईपीएल मैच का पोस्टमार्टम होगा, पर नहीं, ये खेल प्रेमी हैं शायद।
मैं भी बहुत बड़ा
खेल, मैं भी हूँ।
हम सभी हैं खेल प्रेमी और वंदना भी रही हैं बहुत, उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट कवर भी किया आपने। दरअसल शिकायत में इनकी दम है, हमें भी ये महसूस होता है कई बार आईपीएल की खबरें या खेल की खबरें दब जाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा ना हो, लेकिन कई बार वंदना ऐसा होता है कि खबरें इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हमें लगता है कि उन खबरों को भी वाजिब समय मिलना चाहिए। तो कई बार ऐसा न्यूज एजेंडा के कारण होता है, हमारी कोशिश नहीं होती, हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ये आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें दोबारा ना हो और खेल और खिलाड़ी को जितना समय मिलना चाहिए मिलता रहे।
जी अक्सर ऐसा मेरे साथ भी, मैंने भी अभी सुबह का कार्यक्रम किया था तो खेल चाहते हुए भी वो
ड्रॉप करना पड़ा था आपको।
जी जी। अगला जो ईमेल है वो मैं इसलिए स्पेशल मानूंगी क्योंकि वो इन्होंने लिखा है आसिफ करीम ईरान से।
बहुत अच्छे।
और इन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से प्रसारित कुछ विशेष रिपोर्टों ने इनका दिल जीत लिया और उन्होंने कहा कि समाज को इनकी बड़ी ज़रूरत है। और इन्होंने जिक्र जैसे मिसाल दी है कि नितिन श्रीवास्तव की प्रस्तुति, जो उनकी रिपोर्ट हाल ही में आई थी रेडियो पर, वो सराहनीय रही। और उन्होंने डीएन झा की शायद जिक्र कर रहे हैं।
हाँ, गोरक्षकों पे उन्होंने नितिन ने एक सीरीज की थी।
जी, इन्होंने कहा कि काफी प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं और उन्होंने अपनी बात काफी निर्भीक होकर रखी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ईरान से पत्र लिखा है और नितिन तक आपकी बात पहुँचा देंगे। और हमारा मकसद, जैसे हम पहले भी चर्चा करते रहे कि कई विषयों पर हम न सिर्फ खबर बल्कि खबर के पीछे भी जाके झांकते हैं, और इन दिनों गोरक्षकों का मुद्दा बहुत चला हुआ था। वंदना, आपको पता है कई घटनाएं भी हुई थी जिस पर चर्चा होती रहती है, तो हमने ये कोशिश की कि आप तक बात पहुंचाया जाए। और डीएन झा बहुत प्रतिष्ठित इतिहासकार है, हम सभी ने उनको पढ़ के यहां तक पहुंचे, हम लोग उनको पढ़ते रहे हैं, तो डीएन झा ने एक पर्सपेक्टिव रखा और लोगों को पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी तो पंकज जी, समय आज इतना ही है और जाते जाते पता बता दे जो लोग लिखना चाहें हमें।
अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल से लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
लिखते रहिए हमें इसी तरह से। और अब जल्दी से आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले गुजरात लायंस ने आईपीएल में टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बाकी जानकारी दे रहे हैं वैभव दीवान।
आईपीएल सीजन 10 का आज 31वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का गुजरात लायंस के साथ बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों ही टीमों ने इस साल के आईपीएल में ज्यादा अच्छा नहीं किया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर छठे स्थान पर है टेबल पर, वहीं गुजरात लायंस आठवें यानी कि सबसे आखिर में है इस टेबल के। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली को एक बात को ध्यान में रखना होगा कि आज से लेकर आने वाले सभी मैचेस को उनको अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जिताना होगा ताकि उनकी टीम इस आईपीएल की आखिरी चार टीमों में अपनी जगह बना सके। वहीं गुजरात लायंस के कप्तान सुरेश रैना के लिए ये मुश्किल सफर रहेगा। अब बात बैडमिंटन की, जहां चाइना में चल रही एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सिंधु की इस जीत पर दिनेश खन्ना, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और एशियन चैंपियन रहे, उनका क्या कहना था?
मैं बहुत अच्छी जीत मानूंगा क्योंकि काफी आसानी से आया ओहोरी, जो जापान की एक उभरती हुई खिलाड़ी है, उन्होंने उसको पराजित किया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जिसमें कि उनका मुकाबला चाइना की ही बिंजियो से होगा, जो कि एक दूसरे से ये 7 बार खेल चुकी हैं और ही बिंजियो को थोड़ा सा एडवांटेज है इसमें, 4-3 से वो आगे हैं, पर आशा करता हूँ कि इस बार हमें 4-4 की बराबरी की स्कोर देखने को मिलेगी।
वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम को दूसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा और वो चैंपियनशिप से बाहर हुए। सायना नेहवाल भी इस मुकाबले में कल रात पहले ही राउंड में हार के बाहर हो चुकी हैं। बीबीसी खेल समाचार में इतना ही
और समय बहुत कम है, चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। सुकमा में नक्सली हमले के बाद सीपीआई माओवादी ने कहा कि जवान से व्यक्तिगत तौर पर कोई माओवादियों की दुश्मनी नहीं है। भारत प्रशासित कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक सैनिक कैंप के पास चरमपंथी हमला, 3 सैनिकों और 2 चरमपंथियों की मौत। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने बर्लिन में संसद में कहा कि तुर्की और उसके जर्मनी और यूरोपीय संघ से रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। सीरियाई सरकार ने इसराइल पर राजधानी दमिश्क के हवाई अड्डे के पास मिसाइल हमला करने का आरोप लगाया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम फिलहाल यहीं समाप्त होता है। इसका तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी आपसे विदा लेता हूं। अगली मुलाकात हमेशा की तरह भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे होगी। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट bbchindi.com आपके साथ है। नमस्कार।